ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणे श्री चैतन्य मनोभिष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्रीविशाखानितांश। हे कृष्ण करुणार सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिष्ये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि शिगौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरी यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुदिनतारिणे परमानन्दमाधव। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 7 अध्याय 15 श्लोक नंबर 13। धर्म बाधो विधर्म सात परधर्मो अन्यचेदितः उपधर्मस्तु पाखंडो दंभवा सप्तविच्छलः। धर्मबाधो विधर्मः स्यात् परधर्मान्यचेदितः उपधर्मस्तु पाखंडो दंभवा सप्तविच्छलः। धर्मबाध विधर्मः सा परधर्मान्यचेदितः उपधर्मस्तु पाखंडो दंभवा सप्तविच्छलः। धर्मबाध विधर्म स्यात् परधर्मोऽन्यचेदितः उपधर्मस्तु पाखंडो सम्मोहा शब्दविच्छलः। धर्मबाध विधर्म स्यात् परधर्मोऽन्यचेदितः उपधर्मस्तु पाखंडो दंभो वा शब्दविच्छलः। धर्मबाधो विधर्मस्य उपधर्मोऽन्यचेदितः उपधर्मस्तु पाखंडो दंभवा शब्दविच्छलः। मतलब धर्मबाध विधर्मस्यात् परधर्मोऽन्यचेदितः उपधर्मस्तु पाखंडो दंभवा शब्दविच्छलः।
शब्दानुवाद, धर्मबाधः अपने धर्म को लागू होने से रोकता है। विधर्मः धर्म के विरुद्ध स्यात् हो। परधर्मः ऐसे धर्म का अनुकरण जिसके लिए वह अनुपयुक्त हो। अन्य चेदितः किसी अन्य के द्वारा चालू किया गया। उपधर्मः मनगढ़ंत धर्म तु निसंदेह पाखंडः जो वेदों के नियमों प्रामाणिक शास्त्रों के विरुद्ध है। दंभः जो मिथ्या ही गर्वित है। बा अथवा शब्दवि शब्द जाल से छलह ठगने वाला धर्म। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगतगुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की। अनुवाद, जो धार्मिक नियमों किसी को अपना धर्म पालन करने से रोकते हैं विधर्म कहलाता है। अन्य द्वारा चालू किए गए धार्मिक नियम पर धर्म कहलाते हैं। जो मिथ्या गर्व करता है और वेदों के नियमों का विरोध करता है उसके द्वारा सृजित नए प्रकार का धर्म उपधर्म कहलाता है। शब्द जाल द्वारा विवेचना छल धर्म है। तात्पर्य, नए प्रकार के धर्मों का जन्म देना इस युग का फैशन बन चुका है। तथाकथित स्वामी और योगी इसका समर्थन करते हैं कि मनुष्य अपने रुचि के अनुसार किसी भी प्रकार के धर्म का पालन कर सकता है, क्योंकि सारी प्रणालियां अंततत्व एक है। किंतु श्रीमद् भागवतम में ऐसे फैशन परस्त विचारों को विधर्म कहा गया है, क्योंकि ये अपनी ही धार्मिक प्रणाली के विरुद्ध होते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने असली धार्मिक प्रणाली का वर्णन किया है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। असली धार्मिक प्रणाली भगवान के चरण कमलों में शरण ग्रहण करना है। श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद में अजामिल के उद्धार के प्रसंग में यमराज कहते हैं, धर्म तु साक्षात भगवत प्रणीतम। असली धर्म वह है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा प्रदत्त है, जिस प्रकार असली कानून वह है जो सरकार द्वारा प्रदत्त है। कोई अपने घर में न तो असली विधि कानून बना सकता है, न ही वास्तविक धर्म बना सकता है। अन्यत्र कहा गया है, सबै पुंसा परो धर्म यतो भक्तिर अधोक्षजे। असली धार्मिक प्रणाली वह है जो मनुष्य को परमेश्वर का भक्त बना देती है। अतएव प्रगतिशील कृष्ण भावनामृत की इस धार्मिक प्रणाली से जो कुछ भी विपरीत है वह विधर्म, परधर्म, उपधर्म या छल धर्म कहलाता है। भगवत गीता की गलत व्याख्या छल धर्म है। जब कृष्ण कुछ कहते हैं किंतु मूढ़ विवेचक उसका कुछ भिन्न अर्थ लगाते हैं तो यह छल धर्म, ठगने का धर्म या शब्दबीत या शब्द जाल है। मनुष्य को धर्म की इन छलने वाली विविध प्रणालियों से बचना चाहिए। श्री राधा रस बिहारी, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान, श्री गौर निताय, श्रील प्रभुपाद एवं समस्त आचार्यों की अपार कृपा करुणा से आज हम जीवन के परम सौभाग्य के विषय वस्तु श्रीमद् भागवतम का श्रवण एवं कथन करने का परम शुभ अवसर प्राप्त कर रहे हैं। तो पहले में समस्त वरिष्ठ वैष्णव वृंद, माताएं, समस्त भक्तों के चरण कमल में प्रार्थना करके कुछ कहने की चेष्टा कर रहा हूं। तो इस आलोच्य श्लोक में नारद मुनि धर्म के विपरीत जो बाध, जो विधर्म है या अपधर्म है, जो पाखंड से प्रेरित है, जो दंभ के द्वारा चालू है, वही धर्म के विषय में यहाँ पे वर्णना कर रहे हैं। तो अधर्म के जो विषय है, इससे पहले जो वास्तविक धर्म क्या है इसके विषय में जानना परम आवश्यक है। जैसे कि सभी को ज्ञात है कि धर्म जो है किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी मनुष्य के द्वारा यह बता नहीं जा सकता, अपितु यह स्वयं भगवान के द्वारा ही प्रणीत है। धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम। और जो धर्म से विहीन है, जो धर्म के मार्ग में चलता नहीं है, वो पशु के ही समान है, वो मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। धर्म विहीना पशु भी समाना। जो धर्म से विहीन है वो पशु के समतुल्य है। तो इसलिए यह आर्य सभ्यता में पवित्र भारतवर्ष पर धर्म की ध्वजा प्राप्त होता है और इसकी ध्वजा अनेक आचार्य के द्वारा प्रचारित हुआ है। और जहां पे धर्म की हानि होती है वहां पे भगवान का वास नहीं होता है। जैसे कि यह घोर कलयुग चल रहा है तो कलयुग के प्रारंभ में ही जैसे पद्म पुराण में वर्णना मिलता है जब नारद मुनि भ्रमण कर रहे हैं भारतवर्ष में तो देख रहे हैं कि कहते हैं कि तपह नास्ति शौच नास्ति, यहाँ पे तपस्या नहीं रहा, अभी कली काल में शौचता नहीं रहा। अट्टसल्य जनपदाह, जनपदों में अर्ण की बिक्री हो रहा है। कामिन्यः केश सुलिन्यः, कामिनी केश खुले करके घूम रहे हैं। तो इस प्रकार का कलयुग, घोर कलयुग में धर्म नहीं है और धर्म न होने के कारण तपह नास्ति, तपस्या भी नहीं है, सोचता भी नहीं है। और इस अवस्था में अनेक स्थान भ्रमण करने के बाद जब नारद मुनि वृंदावन पहुंचते हैं तो भक्ति महारानी को देखते हैं और भक्ति महारानी जराजीर्ण अवस्था में, उनके दो पुत्र ज्ञान वैराग्य लेटे हुए हैं, उनको देख करके रो रही हैं। और वहां पे वो कह रहे हैं कि इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम अहम गमिष्यामि, मैं इस स्थान को छोड़कर के विदेश चला जाऊंगा। अनेक वर्ष पहले मैं एक बार वृंदावन में था तो श्रील प्रभुपाद की डिसअपीयरेंस डे का उत्सव चल रहा था, तो वहां पे एक दूसरे संप्रदाय के आचार्य ने श्रील प्रभुपाद जी की ग्लोरिफिकेशन कर रहे थे, तो उन्होंने ये वाला श्लोक को लेकर के उदाहरण दिए थे कि जब भक्ति महारानी देखी कि यह स्थान ज्ञान वैराग्य के लिए, उनके जो पुत्र जराजीर्ण हो गए, वृद्धावस्था को प्राप्त कर गए हैं, तो उस स्थान को, त्याग करके विदेश चले जाएंगे। लेकिन नारद मुनि उनको सांत्वना दिए और भक्ति महारानी को घर घर में प्रतिष्ठित करने का वचन दिए। उसके उपरांत जब श्रीमद भागवतम का प्रवचन हुआ तब ज्ञान वैराग्य पुनः युवावस्था को प्राप्त कर गए। तो लेकिन जो भक्ति महारानी की जो इच्छा थी कि मैं विदेश यात्रा करूंगा, वो इच्छा को श्रील प्रभुपाद पूर्ति किए। जब भक्ति महारानी विदेश जाने की इच्छा की तो श्रील प्रभुपाद भक्ति महारानी को अपने हृदय के अंदर में स्थापित करके विदेश यात्रा की और विदेश में भक्ति महारानी की प्रचार की। धर्म का जो ध्वजा है श्रील प्रभुपाद जैसे आचार्यों के द्वारा पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हुआ संसार में। जो महाप्रभु की भविष्यवाणी थी, पृथ्वी ते आछी जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुए मोर नाम, पृथ्वी में जितने भी नगर आदि ग्राम है सर्वत्र मेरा नाम का प्रचार होगा। और इस वाणी को श्रील प्रभुपाद जैसे अद्भुत साहस प्रदर्शन करके इतनी वृद्धावस्था में धर्म की ध्वजा को विदेश में, अभी तो समस्त संसार में इसका प्रचार किए, जिसके कारणवश हम सब भक्ति को, धर्म को, भगवान को जानने की कुछ प्रयास कर रहे हैं। तो जहां पे धर्म नहीं है वहां पे भगवान का वास नहीं होता है, वहां पे पाप का वास होता है। विविध शास्त्रों में धर्म के विषय में विविध प्रकार की वर्णना किया गया है, जैसे कि अनेक प्रकार का धर्म की विवेचना किया गया है। एक धर्म तो साधारण धर्म कहा जाता है, जिस धर्म को भगवान स्थापित करते हैं, जो कि जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जब धर्म की हानि होती है तो उसको पुनः स्थापित करने के लिए भगवान का प्राकट्य होता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यहां पे कह रहे हैं। तो लेकिन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि भगवान के जो द्वारा जो स्थापित जो धर्म है वो सामान्य धर्म हो सकता है, तो उसके बाद भी कोई और दूसरा धर्म है क्या? तो सामान्य धर्म से आगे है विशेष धर्म, जो कि भगवान के द्वारा स्थापित नहीं किया जाता है, अपितु उनके सेवक के द्वारा स्थापित किया जाता है, जो कि सेवा के द्वारा पर्यवेक्षित होता है। और विशेष धर्म के बाद विशेषतर धर्म भी है, उससे भी आगे, जो प्रेम के द्वारा स्थापित होता है, प्रेममयी सेवा के द्वारा स्थापित होता है। और उससे भी आगे है विशेषतम धर्म, जो इन सब का पालन करने वाले भक्तों की सेवा करने के द्वारा प्राप्त होता है। इस विषय में उदाहरण दिया जाता है, जैसे कि भगवान रामचंद्र के द्वारा सामान्य धर्म का प्रवचन किया गया और लक्ष्मण जी के द्वारा सेवा के द्वारा विशेष धर्म का प्राकट्य हुआ, और भरत जी के द्वारा प्रेममय सेवा के द्वारा विशेषतर धर्म प्राप्त किया गया। लेकिन इन सब की सेवा, भक्त की सेवा करना, जो शत्रुघ्न के द्वारा विशेषतम धर्म का प्रवचन किया गया, प्रचलन किया गया। तो इस प्रकार के, लेकिन श्रील प्रभुपाद जैसे आचार्य इन सभी धर्म का स्थापना किए, सामान्य धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर धर्म, विशेषतम धर्म, ये समस्त धर्म का प्राकट्य श्रील प्रभुपाद जैसे अद्भुत आचार्यों के द्वारा इस जगत में विख्यात हुआ। लेकिन जो धर्म से विपरीत जो है, जैसे कि यहां पे वर्णना किया गया है, धर्म बाधो, जो अपने धर्म को लागू होने से रोकता है, और विधर्म यानी कि जो धर्म के विरुद्ध है, जो धर्म के विरुद्ध है और वो अन्यचेदित परधर्म, जो ऐसे धर्म का अनुकरण जिसके लिए वह अनुपयुक्त हो, और अन्यचेदित यानी कि किसी अन्य के द्वारा चालू किया गया जो धर्म है, जो अन्य किसी के द्वारा चालू किया गया जो धर्म है वो क्या है, अपधर्म है और वो पाखंड से प्रेरित है। अब इस संसार में धर्म के नाम पर वास्तविक पाखंड का ही प्रचलन ज्यादा हो रहा है। तो पाखंडमयी जो धर्म है, इस पाखंडमयी धर्म में भगवान को अनुभव किया नहीं जा सकता है, क्योंकि जो धर्म है भगवान के द्वारा प्रेरित है, धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम, तो भगवान के द्वारा जो स्थापित धर्म है वो पाखंडी कैसे वर्णना कर सकते हैं। पाखंडी लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए वो उनके मुखारविंद से, उनके मुख से जो अपने मन धर्म का प्रचलन करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, तो उन पाखंडी जो धर्म है स्वार्थ से प्रेरित है। लेकिन भगवान का जो धर्म है वास्तविक धर्म है, भगवान के द्वारा जो प्रणयन धर्म है वही वास्तविक धर्म है। तो जो तथाकथित धर्म है वो दूसरे भौतिक उपभोग का प्रचार करते हैं, जैसे कि संसार में अनेक पाखंडी धर्म प्राप्त होता है और साधारण जनता जो है इससे वो उस पाखंडी धर्म से प्रभावित हो जाते हैं, उसमें नियमों की कोई ऐसे विवेचना नहीं है, जो इच्छा वो करो, अपने मन के हिसाब से कार्य करो, तो वो पाखंडी धर्म है। और अनेक वर्ष पहले इस पाखंडी धर्म के विषय में हमारे आचार्य लोग वर्णना किए हैं कि उनसे बचना चाहिए। अनेक अपसंप्रदाय हैं जो पाखंडी धर्म का प्रचार करते हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इस विषय में बहुत पहले ही कहे हैं, माथे नेड़ा कौपिन पेरा, नाकेर तिलक गलेर माला, देखते वैष्णवर मतो असल शाक्त काजर बेला, कथा छले महाजन को देच्छे शला, सखी भाव हई निजे हई नंदलाला, ए सब कलीर चेला, ये सब कली के चेला है। माथे नेड़ा मैंने माथा मुंडन करके तथाकथित बहुत बड़े भक्त का स्वरूप बना लेते हैं, कुछ भी व्यवहारिक वस्त्र न धारण करके कौपिन धारण करते हैं और देखते वैष्णव मतो देखने में बहुत बड़ा वैष्णव दिखते हैं, लेकिन अशल शाक्त काजेर वेला, लेकिन वास्तविक शाक्त होते हैं। कथा चले महाजन को देच्छे छला, कथा प्रसंग में जो महाजन लोग जो बोले हैं या जो शास्त्र में बोला गया है उसको मानेंगे नहीं। भगवान के द्वारा प्रणयन किया गया जो शास्त्र है उसको मानेंगे नहीं। भगवान के मुखारविंद से प्रकट गीता आदि वाणी को वो वास्तविक रूप में स्वीकारेंगे नहीं। अपने वाणी के द्वारा जो प्रकट किया गया जो वचन है बोलेंगे, उसका वही गीता बोलेंगे। कथा चले महाजन को देच्छे शला, सखी भाव होई निजे होए नंदलाला। और सखी भाव प्रकट करते हैं कि मैं वास्तविक नंद नंदन हूं और जितने भी नारियां हैं वो मेरे सखी हैं। निजे होए नंदलाला, सहज भजन करछे मामू, और सहजा भजन करते हैं। सहज भजन ऐसा एक कथा है कि बेटा हरिया हरिया बोल मागरू माछे झोल युवती संगे खोल, हरी हरी बोलो मागरू माछ का झोल खाओ और युवती के संग रास मचाओ, ये सहज भजन। क्या है, हम तो भजन करते हैं हरी हरी बोलते हैं, ऐसे पाखंडी धर्म का प्रचलन ज्यादा कलिकाल में होता है। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ये सब कलीर चेला, ये वास्तविक कली के चेला है, कली के रिप्रेजेंटेटिव है, तो इन सब से बचना चाहिए। लेकिन साधारण जो जनता है इसके द्वारा ही ज्यादा प्रभावित है। अनेक व्यक्ति आकर के अपने मन के हिसाब से अनेक धर्म का प्रचलन करते हैं, जैसे कि हम संसार में देखते हैं कितने प्रकार के संस्थाओं के द्वारा कितने तथाकथित धर्म का प्राकट्य किया गया है। कौन क्या किसको शास्त्र के जो विरुद्ध वाला जो कर्म है उसको करके वो वास्तविक धर्म कहते हैं, तो ये सब पाखंडी है। यहाँ पर श्रीमद् भागवत में कहा गया पाखंडो अपधर्मस्तु पाखंडो, जो अपधर्म है वो पाखंड से प्रेरित है, मनगढ़ धर्म है, और जो पाखंड है वेदों के नियम प्रामाणिक शास्त्र के विरुद्ध है। जो वेद यानी कि भगवान के मुखारविंद से प्रकट हुआ है उससे विरुद्ध वाला जो धर्म है यानी कि उनकी मनगढ़ धर्म है, तो उसी प्रकार के जो अधर्मी है पाखंडी है कलिकाल में ज्यादा मिलते हैं और उनके प्रभाव में साधारण जनता आ जाती है, क्योंकि वहां पे ना कोई नियम है ना कोई कानून है। यहाँ पर परपोट में श्री प्रभुपाद कहते हैं कि जो सरकार का जैसे नियम पालन नहीं करते हैं उनको दंड मिलता है, वैसे ही भगवान के द्वारा प्रणयन जो धर्म है उसके जो विरुद्ध कर्म करते हैं वो पाप कहलाता है, अधर्म है, और पाप कर्म करने के कारण उनको घोर नरकों में पतित होना पड़ता है। ऐसे अनेक प्रकार के विधर्मी इस संसार में प्राप्त होते हैं। श्री भक्ति विनोद ठाकुर के समय में ऋषिकेशन नामक एक व्यक्ति थे जो उड़ीसा के खंडगिरी प्रांत में, वो वैसे ही पाखंडी थे, अपने आप को बोलते थे कि मैं सचल जगन्नाथ हूँ, जो जगन्नाथ है वो बैठे हुए हैं, वो कहाँ जाते नहीं, मैं सचल विष्णु हूँ, सचल जगन्नाथ हूँ, मैं सर्वत्र घूम सकता हूँ, ऐसा वो प्रचार करते थे। उस समय श्री भक्ति विनोद ठाकुर मजिस्ट्रेट थे उड़ीसा के, तो उनको जब यह ज्ञात हुआ कि ऐसा पाखंडी अपने आप को भगवान का अवतार कहता है तो उनको अरेस्ट करने के लिए वो गए, और अरेस्ट करने के बाद वो पुरी के जेल में कुछ समय के बाद उनका देह का अंत हो गया। तो संसार में तथाकथित भगवान पाखंडी जो होते हैं वो जेल में मरते हैं, और उन विधर्मियों का, उन अधर्मियों का, उन पाखंडियों का भगवत भक्तों के द्वारा उनका निष्कासन होता है। जैसे कि भगवान धर्म की स्थापना करते हैं, हमारे आचार्य वृंदवी वास्तविक जो धर्म है, जो भगवान के द्वारा प्रेरित है, भगवान के द्वारा प्रणयन किया गया है, उन धर्म का प्रचलन करते हैं, उन धर्म का प्रचार करते हैं। तो ऐसे अनेक पाखंडी इस संसार में मिलते हैं, सहज भाव से कुछ नियम न होने के कारण साधारण जनता उनसे आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे अनेक, जैसे कि एक चारबाक हुए, वो बोले कि जावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पीवित, जब तक जियो आनंद में जियो और आनंद लेने के लिए घी खाओ, नहीं घी हो तो ऋण करो, ऋणम कृत्वा घृतम पीवित। ये देह का क्या विचार है, कब आएगा कब जाएगा, भस्मितस्य देहस्य, कब आएगा, कौन उस ऋण को चुकाएगा, कोई गारंटी नहीं है। तो ऋण करते जाओ, घी खाते जाओ, भोग करते जाओ, ये भोग का सूचक है। और यहाँ पे जो कहा गया है, जो अधर्मस्तु पाखंडो, वो जो पाखंड है वो दंभ से भी प्रेरित है। दंभ यानी कि जो वास्तविक नहीं है उसको प्राकट्य मिथ्या अहंकार करना, वही दंभ है। और विशेष करके दंभ भक्ति के लिए बहुत ही घातक है। दंभ के विषय में पुराणों में एक रोचक कथा प्राप्त होती है। तो जो दंभ है ऐसा वर्णना मिलता है, वो अधर्म का ही पुत्र है। अधर्म का जो पुत्र है वो दंभ है। तो एक बार दंभ विचार किया कि मैं इस ब्रह्मांड का भ्रमण करूंगा। तो दंभ यानी कि जो वास्तविक नहीं है, तो इसलिए दंभ क्या किया, एक साधु का वस्त्र पहन लिया, साधु का चोला पहन लिया और सुंदर स्वरूप प्रकट करके कमंडल में जल लेकर के, और बाएं हाथ में कमंडल लिया और दाहिना हाथ में कुसा ले लिया और संपूर्ण ब्रह्मांड का भ्रमण किया। और देखता है, कहता है कि दंभ, कि संसार में कोई भी स्थान मेरे लिए योग्य नहीं है, कोई भी स्थान स्पर्श करने के लिए योग्य नहीं है। तो जहां भी जाता था जल छिड़कता हुआ जाता था कि सब जगह में असुचि है, असौचता है, ऐसे जल छिड़क करके जाता था। ऐसे भूलोक से धीरे धीरे स्वर्गलोक आदि गमन करके अंतिम में वो सत्यलोक में पहुंचा, जहां पे ब्रह्मा जी का निवास है। तो सत्यलोक में जब पहुंचा तो सत्यलोक के जो द्वारपाल थे तो उनको देखा, बोला कि तुम कितने दूषित हो, इस सत्यलोक में तुम्हारे रहन सहन करने का कोई विचार नहीं है, हटो मेरे सामने से, हट जाओ, ऐसे करके जल छिड़का उनके ऊपर, हट जाओ मेरे सामने से, कह करके आगे चला। ऐसे चल के वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचा और ब्रह्मा जी के पास पहुंच करके ब्रह्मा जी को गाली गुलज करना प्रारंभ कर लिया। दंभ जो साधु का वस्त्र पहना था वो बोला कि कैसा ब्रह्मांड तुमने बनाया है, इस ब्रह्मांड में कोई भी स्थान स्पर्श के योग्य नहीं है, कोई भी स्थान उचित नहीं है, सर्वत्र पवित्रता है। तो ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए, ऐसा कोई जो व्यक्ति, हर एक ब्रह्मांड में अनेक धाम है, तीर्थ है, पवित्र नदियां हैं, तो उन सबको भी ये नकारात्मक भाव से कह करके बोल रहा है कि ब्रह्मांड में कोई भी स्थान पवित्र नहीं है, ऐसा कह रहा है। ऐसा कौन सा बड़ा महात्मा इस ब्रह्मांड में है, ऐसा ब्रह्मा जी भी विचार करने लगे। तो लेकिन वो तो गाली कर ही रहा था दंभ, कोई भी स्थान पवित्र नहीं, बताओ कौन सा स्थान पवित्र है इस ब्रह्मांड में। तो ब्रह्मा जी बोले कि वैसे तो बहुत पवित्र स्थान है, लेकिन मेरा गोदी शायद सबसे पवित्र है, जिस गोदी में मैं भगवान का सर्वग्रह का सेवा करता हूँ, बैठ करके प्रेम में भगवान की नाम कीर्तन करता हूँ, तो शायद अगर यह गोदी तुमको पवित्र लगे तो यहां पे आकर के बैठ जाओ। तो ब्रह्मा जी श्वेत कमल के ऊपर बैठे हुए थे, तो कमल के ऊपर होकर के जब चढ़ा दंभ, तो कमल के ऊपर भी जल छिड़का। ये कमल पवित्र है या नहीं पता नहीं, तो कमल के ऊपर भी जल छिड़का। तो कमल के ऊपर होकर के ब्रह्मा जी के गोदी में बैठ ही रहा था, तो ब्रह्मा जी के गोदी में भी वो जल छिड़का। ये जो वस्त्र कितने दिन से धोएगा नहीं, ऐसा प्रश्न किया। तुमने जो वस्त्र पहना है ये कितने दिन से धोया नहीं, तो वो ब्रह्मा जी के वस्त्र के ऊपर भी जल छिड़का, उसके ऊपर जाकर के बैठा, उसके बाद जाकर के बैठा। और ब्रह्मा जी पूछने लगे, आप कौन है, आप अपना परिचय बताए। तो ब्रह्मा जी के मुंह के ऊपर भी जल छिड़का, बोला कि तुम्हारे मुख से बास आ रहा है, दुर्गंध आ रहा है। तो ब्रह्मा जी चकित हो गए, ऐसा कहने वाला कौन सा व्यक्ति है। तो कुछ मस्तिष्क में विचार किए, तो विचार के ऐसा झूठा यानी कि जो वास्तविक नहीं है उसको मिथ्या के रूप में बोलने वाला मेरा ही पोता, यानी कि ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म और अधर्म भी है, तो उनका पुत्र दम्भ यानी कि ब्रह्मा जी की ही पोता है। तो उसके बाद विचार किए कि ये मेरा ही पोता है जो कि दम्भ है। तो यह संसार में इस प्रकार का दम्भ का प्रचलन ज्यादा है, जो वास्तविक नहीं है उसके ऊपर ही मिथ्या अभिमान करते हैं और उसको ही वास्तविक कहते हैं। लेकिन भगवान के कृपा से, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के कृपा से अनेक आचार्य आकर के वास्तविक धर्म जो भगवान के द्वारा प्रचलन किया गया है उसकी स्थापना इस संसार में की। जैसे कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ के प्रतिष्ठाता आचार्य श्रील प्रभुपाद सर्वत्र संसार में धर्म की स्थापना की। जो मिथ्या धर्म है, छल धर्म है, विधर्म है और पाखंड से प्रेरित है, उनका पूर्ण रूप से निष्कासन करके जो वास्तविक जो धर्म है उसकी स्थापना की। जो धर्म को पालन करना निश्चित रूप से कठोर भाव से करना पड़ता है। पुराणों में, शास्त्रों में अनेक प्रकार की धर्म की पालन की विधियां भी वर्णना किया गया है। कठोर भाव से धर्म की पालन करना पड़ता है, इसमें कोई भी ऐसे विचार नहीं करना पड़ता कि हमारे हिसाब से धर्म का प्रचलन कर ले। जो वास्तविक धर्म भगवान के द्वारा प्रणयन किया गया है वही धर्म का ही प्रचलन या पालन करना पड़ता है, नहीं तो वो मिथ्या धर्म कहलाता है। श्रील प्रभुपाद परपोट में यहां पे कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। जो असली धार्मिक प्रणाली जो है भगवान के चरण कमल में शरण ग्रहण करना ही है, नहीं तो और बाकी जितना भी जो धर्म है वो धर्म कहलाता नहीं है। अगर भगवान के चरण में शरणापन्न न हो तो वो काहे का धर्म। जैसे कि दो तीन दिन पहले श्रीमद् भागवतम में यह चर्चा हो रहा था कि वैसे जो पशु पक्षी भी अनेक हैं जो शाकाहारी हैं, जो वो मांसाहार नहीं करते हैं, तो वो क्या धार्मिक हैं? ना, क्योंकि वो भगवान के शरण में नहीं है इसलिए वो धार्मिक नहीं है। लेकिन जो मनुष्य भगवान के शरणापन्न होता है वही वास्तविक धार्मिक कहलाता है। तो इसलिए यहां पे श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि असली धार्मिक प्रणाली भगवान के चरण कमलों में शरण ग्रहण करना ही है। और जो धर्म की भगवान के द्वारा ही प्रेरित है, यमराज कह रहे हैं धर्मत्व साक्षात भगवत प्रणीतम। तो असली जो विधि है, कानून है, उसका पालन करना पड़ेगा। जैसे कि सरकार का जो नियम है, जैसे कि न पालन करने से उसको दंड मिलता है, वैसे ही वैदिक नियम जो है, जो भगवान के द्वारा प्रणयन किया गया है, उस धर्म का अगर हम पालन नहीं करेंगे तो हमको भी दंड भुगतना पड़ेगा। तो असली धार्मिक प्रणाली वह है जो मनुष्य को परमेश्वर का भक्त बना देता है। अगर परमेश्वर का भक्त बनाने में समर्थ न हो जो धर्म, वो वास्तविक धर्म नहीं है। तो इसलिए कृष्ण भावना मृतमय होना ही वास्तविक धर्म कहलाता है। और जो इससे जो विपरीत है, चाहे उस जहां पे विधर्म हो, परधर्म हो, उपधर्म हो या छल धर्म हो, वो कभी भगवान के चरण कमल प्राप्त नहीं करा सकता है, क्योंकि वो मन धर्म है, निजी स्वार्थ के कारण वो प्रेरित है। और इस मिथ्या धर्म में जो जीते हैं, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं, उनको पता ही नहीं है वास्तविक क्या धर्म है, सदियों से उसका पालन करते आ रहे हैं, चाहे पारंपरिक रीति से या अज्ञानता से हो, लेकिन उसका पालन करते ही आ रहे हैं। लेकिन जैसे कि प्रचार में हम जाते हैं तो बहुत लोगों को कहते हैं कि ये वास्तविक, यह ठीक नहीं है, आप भगवान का भक्ति कीजिए और भगवान को भोग लगाइए। तो वो कहते नहीं, हम सदियों से, हमारा तो यह परंपरा चल रहा है, सदियों से हमारे परिवार में यह पालन किया जा रहा है, कैसे इसको हम छोड़ सकते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस विषय में एक गल्प लिखे हैं। एक व्यक्ति का विवाह हो रहा था, तो उस विवाह में सब प्रकार का विधि का पालन हो गया, होने ही वाला था, यानी कि विवाह की जो पूर्व तैयारी थी वो प्रस्तुत हो गई थी। तो जब समय आ गया विवाह की, तो उस घर में एक सभी एक मुर्गा को ढूंढने लगे कि मुर्गी कहाँ है। क्यों? क्योंकि उनकी ऐसा परंपरा था कि जब भी विवाह होता है तो एक मुर्गी को एक बांस के जो क्या कहते हैं, जो झाड़ी में उसको कवर करते हैं, उसको ढकते हैं, तो वही विवाह का परंपरा, वो करने से विवाह शुभ माना जाता है, निर्विघ्न संपन्न होता है। लेकिन उस समय वो मुर्गी नहीं था। क्या हुआ था कि उनके जो दादा परदादा थे, तो उनके घर में बहुत सारे मुर्गियां थी, तो जब विवाह हो रहा था वो मुर्गियां चारों ओर घूम करके विवाह का जो उत्सव को बहुत डिस्टर्ब कर रहे थे। तो इसके लिए वो क्या किए थे ना, उनके जो दादा परदादा थे, जो उस एक बांस की झाड़ी में उसको कवर कर लेते, उसको ढक दिए थे। लेकिन वो विचार कर लिए उनके परिवार में कि यह हमारी परंपरा है, लेकिन कालांतर से वो मुर्गी उनके परिवार में नहीं रहा, मुर्गियों का पालन नहीं किया गया। लेकिन वो व्यक्ति ढूंढने लगा कहां से मैं मुर्गी लाऊं और उस मेरी जो सदियों से परंपरा चल रहा है उसको कवर करूं, उसको पालन करूं। तो ढूंढ करके एक मुर्गी ला करके वैसे ही एक बांस के झाड़ी में उसको कवर किया, उसके बाद विवाह संपन्न हुआ। तो यह वास्तविक मूर्खता है। तो सदियों से चलता हुआ जो, चाहे वो विधर्म हो, परधर्म हो, अपधर्म हो या छल धर्म हो, वो चाहे पारंपरिक रीति में हो क्यों ना हो, इसका अगर हम पालन करते हैं, यह भी हमारी वास्तविक मूर्खता है। तो इसलिए धर्म का जो तत्व जो है, महाजन के द्वारा प्रणयन किया गया है, भगवान के द्वारा प्रणयन किया गया है। और इस महाजन जैन गतस्य पंथा, धर्मस्य तथ्य निहित गुहाय, धर्म का जो तथ्य है अत्यंत गुह्यतम है, अत्यंत रहस्यमय है। और इस रहस्यमय तथ्य को महाजन ही जान सकते हैं, या जो महाजन के परंपरा में आते हैं, ट्रू फॉलोअर जो है, वो ही बता सकते हैं। तो इसलिए उनके द्वारा जो भगवान के द्वारा जो प्रणयन किया गया जो धर्म है, जो महाजन के द्वारा, उनके शुद्ध भक्तों के द्वारा जो प्रणयन किया गया है, उस धर्म का पालन करना आवश्यक है। नहीं तो बाकी सब धर्म पाखंड कहलाता है, जो कि हमको अधोगति को प्राप्त कराता है। और जहां पे धर्म नहीं है वो पाप कहलाता है, अधर्म पाप का सूचक है। और भगवान के नाम के द्वारा, भगवान के लीला गुण चरित्र के द्वारा समस्त अधर्मों का नाश होकर के धर्म का स्थापना होता है, जो कि श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रणयन किया गया है। जो ही भगवान का नाम लेना ही, भगवान का भक्ति करना ही, जैसे कि श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, कृष्ण भावना मृत ही वास्तविक धार्मिक कहलाता है, वास्तविक धार्मिक प्रणाली है, वही वास्तविक धर्म है। और उस धर्म का पालन करने में अगर अनजाने में या अज्ञानता में कोई अगर भूल चूक हो जाए, तब भी भगवान क्षमा करते हैं। भगवान की नाम की ऐसी सामर्थ्य है कि समस्त अधर्मों से, पाप कर्मों से हमको मुक्त करा करके भगवान का चरण कमल प्राप्त कराता है। तो इसीलिए कृष्ण भावनामृत होना ही वास्तविक धार्मिक पद्धति है, धार्मिक प्रणाली है। और कृष्ण भावनामृत यानी कि भगवान की सेवा, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का लीला, भगवान का गुण, भगवान का चरित्र, भगवान की अद्भुत कथाएं जो कि शास्त्र में प्राप्त होता है, वैष्णव के मुख से, शुद्ध भक्तों के मुख से श्रवण करना चाहिए और भगवान का नाम लेना चाहिए। और भगवान के नाम के द्वारा समस्त अधर्म, ऐसे कि पापी तापी जितने भी है वो उद्धार हो गए हैं, समस्त अधर्म का नाश भगवान के नाम के द्वारा ही हो जाता है। पापी तापी जत छिलो हरि नाम उद्धार लो तार सखी जगाई माधाई, ऐसे भगवान की नाम की महिमा है कि उसके द्वारा समस्त अधर्म से हम मुक्त होकर के वास्तविक धार्मिक प्रणाली में प्रतिष्ठित होकर के भगवान का चरण कमल प्राप्त करते हैं। तो इस विषय में एक छोटा सा प्रश्न स्मरण हो रहा है कि भगवान के नाम की इतनी महिमा है कि बड़े बड़े अधर्मी भी इससे उद्धार हो गए। जैसे कि श्रील प्रभुपाद यहाँ पर अजामिल का उद्धार दे रहे हैं, अजामिल का उद्धार प्रसंग में वर्णना करते हैं यहाँ पे। अजामिल में, अजामिल इतना बड़ा पापी था, लेकिन भगवान के नाम के द्वारा वो पूरा जीवन भर अधर्म ही किया था, पाप कर्म किया था, लेकिन उद्धार हो गया भगवान के नाम के द्वारा। इस विषय में एक कथा प्राप्त होती है कि चार चोर थे, तो वो जंगल में चोरी करना, लूट करना और हत्या करना ही उनकी प्रवृत्ति थी, पूरे अधर्मी ही थे, यानी कि समस्त पाप करते थे। तो जंगल में कोई भी व्यक्ति जाता था तो उसको हत्या करते थे और जितना भी धन था, सामान था, उससे लूट लेते थे उससे। तो लेकिन चार चोर जो थे उनको चोरी करने के लिए वो कोड लैंग्वेज यूज करते थे, गुप्त शब्द। तो अलग अलग जगहों में वो छुप करके वृक्ष के ऊपर रहते थे। तो पहला जो चोर था वो कहता था कि कोई अगर आ जाएगा तो कहता था कि नारायण, ऐसा उच्चारण करता था, यद्यपि उसको नारायण शब्द की अर्थ मालूम नहीं था। नारायण शब्द का अर्थ वो अधर्मी ऐसा समझता था कि नर अरण्य, यानी कि इस अरण्य में कौन नर आ गया क्या, इसका कोडवाड़े अगर नारायण कह ले तो दूसरा चोर पहले से सजाग हो जाता था, रेडी हो जाता, हाँ कोई नर, यानी कि इस अरण्य में कोई नर आ गया, तो ऐसे उच्चारण करता था नारायण, ऐसे उच्चारण करता था तो दूसरा चोर रेडी हो जाता, हाँ कोई नर आ गया इस अरण्य में। तो उसके बाद दूसरा चोर का कोडवाड़ था, वो जोर से उच्चारण करता था दामोदर, यानी कि दामोदर भगवान का कितना सुंदर नाम है, माता यशोदा भगवान कृष्ण को कार्तिक महीने में, जैसे कि जो दाम यानी कि उदर, उदर में दाम यानी कि रस्सी से बांधे, तो जो पूर्ण ब्रह्म की पद्म पुराण में जो विवेचना है, एक दामोदर यानी कि जिसके कमर में दाम का चिन्ह है, दामोदर भगवान। तो दामोदर शब्द उच्चारण का कितनी महिमा है, स्वयं भगवान का ही नाम है, लेकिन उस दामोदर शब्द का अर्थ उस चोर को पता नहीं था, वो ऐसा उसका अर्थ उनको उनको यह समझती, यानी कि उसके उदर में कोई दाम है क्या, यानी कि कोई धन है क्या, उसके उदर में गांठ बांध करके रखा है क्या दामोदर। तो उसका कोड़वाड़ रहता था दामोदर, चोर से उच्चारण करता दामोदर, तो तीसरा चोर जो था वो रेडी हो जाता था। जब कि अगर नर तो आ गया अरण्य में और आ गया और उस खाली नहीं है, फोकट में नहीं आ रहा है, उसके उदर में दाम है यानी कि धन है, तो हमारे फायदे का है। तो तीसरा चोर बोलता था कि बंसीधर, जोर से उच्चारण करता था, अगर अरण्य में नर आ गया और उसके बाद भी उसके उदर में दाम है यानी कि धन है, तो बंसीधर यानी कि उस बंसीधर यानी कि भगवान बांसुरी बजाने वाले हैं, इसके लिए उनका नाम है बंसीधर। लेकिन उनको यह अर्थ प्राप्त होता था, वो ऐसा समझते थे कि बंसीधर यानी कि बांस को धर और मार इसको बांस को धर यानी कि बांस का डंडा को पकड़ और उसको मार, यानी कि वो धन को छीनने के लिए उसको मारो। तो ऐसा बंसीधर शब्द का वो उच्चारण करते थे तीसरा चोर। और उसके बाद भी अगर कुछ रह जाए तो चौथा चोर बोलता था हरी हर हरी हर हरी हर, यानी कि भगवान का नाम हरी है, वो समस्त कष्टों से मुक्त प्रदान करते हैं, उनका नाम इसलिए हरी है, हरण कर लेते हैं समस्त कष्ट से। तो लेकिन वो समझते हरी हर, जो भी है हर लो कुछ भी बाकी मत रखो, हरी हर हरी हर हरी हर ऐसे उच्चारण करता था। जीवन भर यह अधर्म का कार्य करके पाप कर्म करके उनका जीवन चला गया। तो एक दिन बहुत प्रतीक्षा किए, जंगल में कोई भी व्यक्ति नहीं आया, कोई भी नर अरण्य नारायण नहीं आया, अरण्य में कोई भी नर नहीं आया, तो ना उनका जो जितना भी कोड़वाड़ था उस दिन कुछ काम नहीं किया क्योंकि कोई नर आया ही नहीं। लेकिन कड़क एक जो बारिश हो रहा था और बिजली की चारों के ऊपर गिरने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन देखा गया कि यमराज के दूत न आकर के विष्णु दूत आकर के उन सबका वैकुंठ ले गए। तो भगवान का नाम पाप कर्म में भी विभूत करते थे, अधर्म कार्य में विभूत करते थे, लेकिन बार बार नारायण वंशीधर दामोदर हरिहर आदि शब्द के उच्चारण करने के कारण वो समस्त अधर्म कर्म से मुक्त होकर के भगवान का धाम को प्राप्त की। कहने का उद्देश्य यह है कि जैसे कि प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं, तो कृष्ण भावनामृत ऐसा प्रणाली है, उसके द्वारा समस्त अधर्म क्रियाओं से समस्त पाप क्रियाओं से हम मुक्त हो जाते हैं और भगवान का चरण कमल प्राप्त करते हैं। तो ऐसा इस आलोच्य श्लोक में कहा गया है। तो आज जगदीश पंडित का भी अपीयरेंस डे है, तो उनके विषय में 5 मिनट कहेंगे। तो जो जगदीश जो पंडित महाप्रभु के अन्यतम पार्षद है, गौर लीला में उनकी चैतन्य चरितामृत में चैतन्य भागवतम में जगदीश पंडित जी के बारे में विवेचना वर्णन किया गया है। गौर गुणदेश दीपिका में जगदीश पंडित को द्वापर में वो यज्ञ पत्नी थे ऐसा सूचना मिलती है गौर गुणदेश दीपिका में। तो जगदीश पंडित तो उनका जो जन्म है गुवाहाटी, अभी जो असम जो गुवाहाटी है, शास्त्र में उसको प्राग ज्योतिषपुर भी वर्णना किया गया है, तो वहां पे उनका जन्म हुआ। और वो कुछ समय के बाद मायापुर आ गए और मायापुर में उस समय चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हो गया था, सची के आंगन में, जगन्नाथ मिश्र सची के आंगन में चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हो गया था। और जगदीश पंडित बहुत प्रेम से जो बालक निमाई की वात्सल्य भाव से उनको प्रेम करते थे, उनकी जो वाइफ थी दुखिनी जो थी वो भी सची माता के समतुल्य ही बालक निमाई की प्रेम से सेवा करते थे, उनका लालन पालन करते थे। चैतन्य भागवत में ऐसा वर्णन है कि एक बार एकादशी के दिन चैतन्य महाप्रभु रोने लगे और कुछ प्रसाद नहीं पाए, तो वो रो करके बोले कि मुझे प्रसाद चाहिए तो अन्न चाहिए। और जो कि जगदीश पंडित के यहाँ जो नैवेद्य है वो विष्णु भगवान को निवेदन कर रहे हैं, वो मुझे प्राप्त होना है। तो जब बालक निमाय बार बार रोए तो उसके बाद माताएं जो थी, नारियां जो थी, बहुत ही व्याकुल हो गई और बाध्य होकर के जगदीश पंडित के यहाँ गए और सभी आश्चर्यचकित हो गए, कैसे इतने बालक निमाय को कैसे पता चल गया कि वहां पे नैवेद्य अर्पण हो रहा है। और यह तो ठीक नहीं है, जो भगवान को निवेदन किया जा रहा है उसको मांगने के लिए, प्रसाद नहीं मांग रहे थे, नैवेद्य मांग रहे थे, भोग। तो लेकिन जगदीश पंडित जो थे महाप्रभु के नित्य पार्षद थे, इसलिए उनको ज्ञात हो गया कि स्वयं ब्रजेंद्र नंदन वही श्याम सुंदर भगवान कृष्ण ही गौर के रूप में सची के आंगन में प्राकट हुआ है उनका। तो वो उनको दे दिए नैवेद्य। आगे चलकर के महाप्रभु जब नवद्वीप में नाम संकीर्तन आदि किए, वो भी उसमें सम्मिलित थे, और बाद में महाप्रभु की आज्ञा से वो जगन्नाथपुरी चले गए। और जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का प्रेम से दर्शन करते थे, भाव विहल हो जाते थे। अनेक वर्ष रहने के बाद जब महाप्रभु संन्यास ग्रहण किए तो उसी समय महाप्रभु बोले कि आप यहाँ पे आ जाइए। जब महाप्रभु पुरी आने वाले थे, महाप्रभु जगदीश पंडित को बुला लिए कि आप नित्यानंद प्रभु के सहित प्रचार कीजिए हरिनाम का। लेकिन जगन्नाथ जी के प्रति उनका इतना प्रेम था जगदीश पंडित का, जिसके कारण वो व्याकुल हो गए, कैसे मैं जगन्नाथ जी का त्याग करूं। तो जाही रहे थे, पुरी का त्याग ही कर रहे थे उस समय, उन पुरी के जो राजा थे उनको सपनादेश हुआ कि जगन्नाथ जी की जो पुरातन विग्रह, जो जगन्नाथ जी का जो 12 वर्ष में उनका विग्रह परिवर्तन हो जाता है, नवकलेवर जो होता है, तो उसमें जो पुरातन जो विग्रह होते हैं वो मिट्टी के अंदर उनको समाधि दिया जाता है। लेकिन 12 साल के बाद जब पुनश्च वही स्थान में दूसरे विग्रह को भी समाधि दिया जाता है, तो जब खोदा जाता है तो वहां पे कुछ नहीं रहता है। तो लेकिन जगन्नाथ जी बोले, मेरा जो पुरातन विग्रह है तुम जगदीश पंडित को दे दो। यद्यपि यह नियम के विरुद्ध था, लेकिन भगवान के आज्ञा से जब राजा ने खुदाई की तो देखे कि स्वयं जगन्नाथ का वही विशाल विग्रह अब भी वैसे ही स्वरूप में है। तो सभी आश्चर्यचकित हो गए और जगन्नाथ जी की आज्ञा से जगदीश पंडित को वो विग्रह मिला, प्राप्त हुआ। और लेकिन जगदीश पंडित विचार के इतने विशाल, जगन्नाथ जी का जो विग्रह का जो हाइट है 6 फुट 3 इंच है, इतने विशाल विग्रह को मैं कैसे अपने ग्राम ले जाऊं मायापुर तक। तो जगन्नाथ जी बोले कि कुछ चिंता मत करो, तुम मुझे एक नए वस्त्र में ढक दो और दो ब्राह्मण के सहित मैं हल्का हो जाऊंगा, इतना विशाल विग्रह होने के बाद भी तुम्हारे प्रेम में मैं हल्का हो जाऊंगा। और जगदीश पंडित वैसे ही किए और नैवेद्य अर्पण करते थे रस्ते में। और एक स्थान आया, चकदा नामक स्थान आया, जो कि तो वहां पे जगन्नाथ जी तो स्नान कर रहे थे जगदीश पंडित, और दो ब्राह्मण धोए हुए थे जगन्नाथ जी का विग्रह को, लेकिन इतने भारी हुए कि जगन्नाथ जी वहां पे उनको ढोया नहीं गया, तो वहां पे रख दिए जमीन में एक वट वृक्ष के नीचे। तो और जब जगदीश पंडित आए, देखे कि जगन्नाथ जी अभी ब्राह्मण ढोए हुए नहीं है, तो बोले कि इतने भारी हो गए हम ढो नहीं पाए। तो जगन्नाथ जी को वहां पे स्थापना किया गया। और बाद में जगदीश पंडित भी अपने ग्राम को लौटे नहीं, जगन्नाथ जी का सेवा करने के उद्देश्य से वहां पे ही रह गए चकदा में। तो चकदा भी बहुत पुराणों में उसकी वर्णना किया गया है, वहां पे प्रद्युम्न संबरासुर का वध किए थे, ऐसा भी वर्णना मिलता है। तो उस स्थान में जगन्नाथ जी स्थापित हो गए और बाद में महाप्रभु भी वहां पे दर्शन करने के लिए आए हैं, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु आदि। तो ऐसे जगन्नाथ जी विशालतम विग्रह जगन्नाथपुरी से वहां तक चले गए। तो जगदीश पंडित ऐसे महानतम वैष्णव थे। गौरगुणदास दीपिका में और भी वर्णना मिलता है कि वो जैसे कि पहले यज्ञ पत्नी थे और चंद्रसेन नामक के एक गोप भी थे, ऐसा भी वर्णना मिलता है। तो ऐसे महानतम वैष्णव का आज प्राकट्य तिथि है। महाप्रभु के अन्यतम पार्षद है तथा नित्यानंद प्रभु के ही भी पार्षद है। तो उनके चरणों में भी हम प्रार्थना करें कैसे वो हमको कृपा करुणा करें, जिसे कि हमारे नाम के प्रति और भगवान के प्रति, आचार्यों के प्रति रति मति भक्ति प्राप्त हो। तो ऐसा उनकी चरणों में बार बार निवेदन है। तो समय यहाँ हमको विराम देने के लिए कह रहा है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, हरिनाम संकीर्तन की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की, पतित पावन श्रील गुरु महाराज की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे।